इसको समझाने में कि जैसे आम आदमी अगर होते हैं कैसे कैसे अल्लाह की तरफ चल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि अगर दुनिया के अच्छे अमाल हो और आसमान से फर्क कैसे होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा भी नहीं हो सकता कि दुनिया के अंदर अमाल बदल हो और आसमान से अच्छे कैसे होते हैं, ये भी नहीं हो सकता। जैसे मुसलमान के अमाल होते हैं उनकी अधिकार में दुनिया और आखिरत में उनकी अंदर जमीन पर भी उनके असर होते हैं, आसमानों पर भी उनके असर होते हैं, दिशाओं में भी उसके असर होते हैं, चांद और सूरज पर भी उसके असर होते हैं, आम आदमी इनके ज्यादा ताकत है। अगर गुना है तो उसके असर आप ऐसे ही देख लीजिए, और अगर अल्लाह की जमीन पर इताअत की जाती है तो उसके असर जमीन से लेकर आसमान तक कैसे ही नजर आएंगे। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह हजरत जी फरमा देते हैं कि यूं समझना चाहिए मुसलमान बंदे को कि गोया आसमान के दो दरवाजे हैं, एक दरवाजे से इंसान के आमाल चलते हैं और दूसरे दरवाजे से उन्हीं आमाल के मुताबिक कैसे उतरते हैं। और उसके आसान मिसाल यूं समझाते थे कि अगर कोई आदमी मकबूल का तरफ तक होएगा तो मकबूल भी निकलेंगे, और अगर कोई आदमी सेब का तरफ तक होएगा तो सेब भी निकलेंगे, उल्टा कभी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की कुदरत तो इसी तरीके से ये ताकत जो है वो अल्लाह ताला का पहले से है और अभी तक रहेगा, इसमें तब्दील नहीं आ सकती। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, कि अल्लाह ताला का जो ताकत है और अल्लाह की जो सुन्नत है और अल्लाह का जो तरीका है तरीके में कभी तब्दीली नहीं आती। इंसान है और इंसान से गुनाह हो जाता है, उसके लिए अल्लाह ताला ने मौत तक हमें फिर दे रखी है। मौत से पहले पहले भी अगर इंसान अल्लाह ताला का दरवाजा ठीक खिलाता है, अल्लाह ताला उसके कोबा को दूर फरमा देते हैं। इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दि मा युग़दि, सूरह पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तक बरकरार तारी नहीं होता बंदे की तौबा अल्लाह ताला कबूल फरमाते रहते हैं। जिंदगी खत्म होने के चंद लम्हात बाकी होते हैं और बंदा अगर अल्लाह ताला की जनाब पे और अल्लाह ताला के हुजूर में इनामत करता है, रुजू करता है, तब भी अल्लाह ताला इसको माफ फरमा देते हैं। बल्कि यहाँ तक फरमाया कि बंदों के गुनाह आसमानों तक भी पहुंच जाए, लेकिन सच्ची पक्की अगर तौबा कर लेता है तब भी अल्लाह ताला इसको माफ फरमा देते हैं, वाला अखबारी पर फरमा देने की मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। और हम सब ये भी जानते हैं कि हमारे गुनाहों की हैसियत अल्लाह ताला की रहमत के मुकाबले में कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला की रहमत को इतनी ज्यादा वसी है कि उसका कोई करारा नहीं। और उलमा ने लिखा है कि अनार समान के आसमान तक तो किसी के गुनाह होंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी लिखा है कि अगर तुम्हारे गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक भी पहुंच जाए तब भी मुझे कोई परवाह नहीं है, हालांकि इतने गुनाह किसी के नहीं हो सकते, लेकिन तौबा शर्त है, तौबा और इस्तिग़फ़ार। और तौबा का सिर्फ ये माना नहीं है कि बंदा सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, इसको तौबा के अल्फाज कहा जाता है। तौबा की जो हकीकत होती है उसका ताल्लुक जो होता है वो हमारे दिल से होता है, मतलब हजार मरतबा लाख मरतबा भी हम तस्बीह पढ़ें लेकिन अगर हमारे दिलों में कोई कैफियत पैदा नहीं होती, हमारे दिलों में कोई शर्मिंदगी पैदा नहीं होती और हमें गुनाहों का अगर कोई एहसास पैदा नहीं होता तो ये सिर्फ अल्फाज के हम रट लगाते हैं, इन अल्फाज में कोई हकीकत नहीं। जैसे उसकी मिसाल में एक तो हकीकत में शेर होता है और एक कागज पर बना हुआ शेर होता है, या ये कि उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ शेर है और उसका मुंह भी खुला हुआ है, तो उसके मुंह में बच्चे उंगलियां भी डालेंगे, हाथ भी डालेंगे, लेकिन कोई नहीं डालेगा, इसलिए कि ये एक तस्वीर है, ये एक मुजस्समा है जो बनाया हुआ है। और हकीकत में अगर शेर होता है तो हरेक उससे डरता है, पहलवान भी डरता है। इसी तरह तौबा के एक अल्फाज होते हैं और एक तौबा और इस्तिग़फ़ार की हकीकत होती है। कि तौबा के अल्फाज को मसलन हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, یہ تمہارا کیا الفاظ ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، تمہارا کیا الفاظ ہے؟ استغفر اللہ الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیہ، یہ تمہارا کیا الفاظ ہے؟ اور جب نماز ختم ہوتی ہے تو ہم بھی اتنی ظلم تو رب ظلم کثیرہ والی جو دعا پڑھتے ہیں، یہ سارے توبہ کے الفاظ ہیں. اور توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ صحیح معنوں میں اپنے کو مجرم سمجھے کہ میں مجرم بھی ہوں اور اس جرم پر میں شرم بھی کرتا ہوں، شرمندگی کا احساس بھی مجھے ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے رجوع بھی کرتا ہوں اور اس نیت سے کہ آئندہ میں اس گناہ کو بالکل چھوڑ دوں گا، میں عزم مسمم کرتا ہوں، میں پختہ ارادہ کرتا ہوں، جو گناہ میری زندگی میں ہے، جن نافرمانیوں کے ساتھ میں زندگی بسر کرتا ہوں، اس کو آج ہی سے میں چھوڑ دیتا ہوں اور آئندہ میں اس کو بالکل نہیں کروں گا، اور جن لوگوں کے حقوق میرے ساتھ وابستہ ہیں ان کے حقوق میں پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا اور میں آج سے اس کو شروع کر دیتا ہوں. اس کو کہتے ہیں توبہ کی حقیقت. اور حقیقت جو ہوتی ہے وہ دل پہ ہوتی ہے اور الفاظ جو ہوتے ہیں وہ ہماری زبان پر ہوتے ہیں. ہمارے بزرگ کے حضرت صدیق صدیقی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو فرما دیتے ہیں، یعنی کہ ان کا زمانہ تو 1000 سال پہلے کا زمانہ تھا، لیکن اس وقت تو کتنے اچھے لوگ تھے، ان کو یہ فرما دیتے ہیں کہ استغفار نہ یحتاج الى استغفار کثیر، ان کا جملہ معروف ہے کہ ہم آج ایسے استغفار کرتے ہیں کہ ہمارے استغفار پر بھی دوسری استغفار نہیں کرے، کہ ہمارے استغفار یا ایک مذاق بن گیا اور ایک ظاہری شکل ہے کہ بندہ استغفار کہتا ہے لیکن اس کے چہرے پر ڈر ہی نہیں ہے، وہ ڈر ہی منڈاتا رہتا ہے اور استغفار کرتا ہے، بندہ حرام مال کھاتا رہتا ہے اور استغفار کرتا ہے، اس بندے پر ہزاروں بندوں کے حقوق کاٹے ہیں اور پھر بھی وہ استغفار. حضرت خان بھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو باور لب صبح پر دل پر اذوا کے گناہ معصیت را اللہ نہایت بر استغفار ایمان، یہ ان کا ایک فارسی کلام ہے. وہ فرماتے ہیں کہ توبہ پر لب، لب کا معنی بھول زبان، کہ توبہ توبہ ہماری زبان پر ہوتا ہے، توبہ استغفار ہماری زبان پر ہوتا ہے. صبح پر تب، صبح کا معنی تسبیح، اس کو فارسی میں صبح کہتے ہیں. صبح پر تب، تب کا معنی ہتھیلی، کہ توبہ توبہ ہماری زبان پر ہوتا ہے اور تسبیح ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے. دل پر ازدوا کے گناہ، لیکن دل ہمارے گناہوں سے بالکل بھرا ہوا ہے، ہم تسبیح بھی کرتے ہیں، توبہ توبہ بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. پھر آگے حضرت فرماتے ہیں معصیت را اللہ کی عنایت پر استغفار ایمان، ہمارے گناہوں کو بھی ہمارے استغفار پر ہنسی آتی ہے. معصیت را اللہ کی عنایت، ہمارے گناہوں کو بھی ہمارے استغفار پر ہنسی آتی ہے کہ ہمارے اوپر کیسا استغفار کرتا ہے. اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، اصل تو یہ ہے کہ ہم گناہوں کو بالکل چھوڑ دیں، اور اگر گناہ ہم سے ہو گئے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھول کر رکھے ہیں. بندہ صبح جب جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اور شام کا گنہگار ہوتا ہے، صبح جاتا ہے اس کو معاف فرما دیتے ہیں، صبح کا گنہگار ہوتا ہے شام کو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ صبح کے گناہ معاف کر دیتا ہے، رات کا گنہگار ہے صبح کو جاتا ہے رات کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت زیادہ وسیع ہے، اس نے اپنے بندوں کو کہہ دیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہماری رحمت سے تو نا امید مت ہو جاؤ. نا امیدی یہ بھی ایک کفر ہے، اور نا امیدی یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ایک برزن ہونے کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے برزن ہونا انسان کو کفر سے قریب کر دیتا ہے. بعض مرتبہ مسلمانوں سے بھی ایسے جملے نکل جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ برزن ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے بہت زیادہ ہو گئی، بارش بالکل نہیں ہوتی تھی، سب بندے پریشان تھے، بنی اسرائیل کی پوری قوم پریشان تھی، اور وقت کے بڑے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت ہارون علیہ السلام تھے، اور بنی اسرائیل کے اور بھی بہت سارے انبیاء بڑے بڑے مشائخ اور بزرگان دین تھے بنی اسرائیل میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو جمع کیا، جن کی تعداد 70,000 بتائی جاتی ہے، 70,000 آدمی زبان میں کثرت کے لیے بولا جاتا ہے، 70 کا جو عدد ہوتا ہے وہ کثرت بتانے کے لیے بولا جاتا ہے. تو سب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جمع کیا کہ بارش تو نہیں ہوتی، آخر ایسا کون سا ہمارا جرم ہے ऐसा कोई सा गुनाह की बारिश नहीं होती, सबको जमा किया। और मूसा अलैहिस्सलाम खुद दुआ फरमाते थे और पूरी कौम इस पर आमीन कहती थी, पहले तो दुआ कराई लेकिन बारिश नहीं हुई। दूसरे दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने सबको जमा किया और वही दुआ कराई और लोगों ने आमीन कही, फिर भी बारिश नहीं हुई। तीसरे दिन फिर जमा किया, फिर भी बारिश नहीं हुई। हालांकि जलीलुल कद्र नबी है, उलुल अज़्म नबी है, और सबको जमा किया, आसमान से वही आई। ये बात दरअसल ये है कि इसी मजमे में मेरा एक बंदा ऐसा है कि जो 40 साल से मुसलसल मेरी नाफरमानी करता है, और नाफरमानी की उसकी ऐसी है कि गोया वो मेरा मुकाबला कर रहा है। जब तक ये बंदा इस मजमे से नहीं निकल जाएगा, वहां तक मैं तुम्हारा तुम्हारी तौबा इस्तिगफार भी कबूल नहीं करूंगा, बारिश नहीं होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सलाम ने लोगों को जमा किया कि वही खुदावंदी ने मुझे ये बताया कि इस मजमे में एक बंदा ऐसा है कि 40 साल से मुसलसल गुनाह करता है, वो इस मजमे में से निकल जाए। अब ये बंदा जो 40 साल से गुनाह कर रहा था, जिसकी जिंदगी में ताअत का नामो निशान नहीं था, उसने सोच लिया कि ये इशारा मेरी तरफ है। लेकिन उसने ये भी अपने दिल में कहा कि अगर मैं मजमे से निकल जाऊंगा तो शर्मिंदा हो जाऊंगा, और अगर नहीं निकलूंगा तो मेरी वजह से पूरी कौम परेशान हो जाएगी। तो किस्म की परेशानियां थी, निकल जाऊंगा तो शर्मिंदा हो जाऊंगा, और अगर मैं मजमे में बाकी रहूंगा तो पूरी कौम बारान रहमत से मायूस हो जाएगी, ना उम्मीद ना उम्मीद हो जाएगी, और मेरी वजह से सबको परेशानी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। चुनांचे उसने मजमे में ही अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक ठीक करना शुरू कर दिया। और चूंकि मेरे दोस्तों नदामत और शर्मिंदगी जो होती है उसका ताल्लुक दिल से होता है, अगर सही मानों में दिल में शर्मिंदगी है, दिल में नदामत है, और जबान से एक मरतबा भी अस्तग़फिरुल्लाह अगर कह देगा तो उसका काम पूरा हो जाएगा। और शर्मिंदगी दिल में नहीं है, गुनाहों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, करोड़ मरतबा भी इस्तग़फार करेगा कुछ भी नहीं होगा। असल शर्मिंदगी है और एहसास है और गुनाहों को छोड़ना है। ये कुरान और हदीस का मफहूम है कि तौबा इस्तिगफार किसे कहते हैं, कि तौबा का सबसे बुनियादी मफहूम है अत्तौबा अल नदामा, कि तौबा जो है वो नदामत को कहा जाता है, शर्मिंदगी को कहा जाता है। एक पहलू की शर्त के नदामत, और दूसरी शर्त उलमा ने ये लिखी है कि अज़्म मुकम्मल कर देना, कि इसी वक्त मैंने इस गुनाह को छोड़ दिया, हराम माल खाता हूँ छोड़ दिया, हराम कारोबार करता हूँ मैंने छोड़ दिया, मेरे घर का मीटर बंद है आज से चालू कर दूंगा, मैं रिश्वत देता हूँ आज से इसको मैं बंद कर दूंगा, जितने भी हराम काम है जिसको हम अच्छी तरह जानते हैं उसी वक्त छोड़ देना, मैंने अज़्म मुसम्मम किया कि मैं इसको छोड़ देता हूँ। तीसरी शर्त आइंदा न करने का पुख्ता इरादा कर लेना, कि आइंदा मैं बिल्कुल इसको नहीं करूंगा, ये पुख्ता इरादा इसको कहते हैं। ये तीन शर्तें बुनियादी हैं कि अगर गुनाह का ताल्लुक जो है बंदे और अल्लाह के दरमियान में है तो ये तीन शर्तें हैं, और अगर गुनाह का ताल्लुक बंदों में आपस में है कि किसी का माल मैंने बसब कर लिया, किसी का माल मैंने चोरी कर लिया, किसी को मैंने बेचा तकलीफ पहुंचाई, किसी का मैंने बेचा मजाक किया, किसी का मैंने दिल दुखाया, कोई मुझसे नाराज है और नाराज इस वजह से है कि इसकी कोई हड्डी की वजह है, बेचा नाराज नहीं, इसकी कोई हड्डी की वजह है कि आप उससे क्यों नाराज हैं, तो हड्डी की अगर बचपन बार मरतबा नाराजगी क्यों हो जाती है, इसको नाराजगी नहीं कहते, नाराजगी की वजह क्या है, तो इस वजह से नाराज है, वो मुझे सलाम करने के लिए महज नाराजगी की वजह से तैयार नहीं है, तो ये आपस में बंदों के जो हुकूक होते हैं इसका काम। तो अगर बंदों के आपस में रंजिश है या एक दूसरे का हक दबा दिया तो फिर ये चौथी शर्त अभी तक भी है कि उनके जो हुकूक आपके जिम्मे है हमारे जिम्मे है, तो इनको पहुंचाने की पहले पूरी कोशिश करना और आज से ही इसको शुरू कर देना। तो ये चार शर्तें जब तक मुकम्मल नहीं होती वहां तक किसी बंदे की तौबा मुकम्मल नहीं हो सकती। गुनाहों पर शर्मिंदगी, गुनाहों को बिल्कुल छोड़ देना, और आइंदा का करने का पुख्ता इरादा कर लेना, और अगर आपस में एक दूसरे का हक दबा दिया है तो उसको पहुंचाने का इरादा करना, ये चार शर्तें। फिर अगर आइंदा गुनाह हो जाए, और सारी की बात है हो जाता है, इस वक्त तो पुख्ता इरादा किया लेकिन आइंदा हो जाए तो उस वक्त की तौबा फिर अलग है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, वो बंदा शर्मिंदा भी हो गया, उसने मजे में ही अपना ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ ठीक करना शुरू कर दिया कि या अल्लाह मेरा और आपका हाथ है, उन सारे सलात और सलाम के सामने भी जाहिर करना नहीं चाहता, आप बस मुझे माफ कर दें, मैं नदामत और शर्मिंदगी का इजहार आपके सामने करता हूँ। चुनाचे इस बंदे ने दिल में तौबा कर ली, यहाँ पर मजमा छट गया, लोग अपने घरों में पहुंच गए और जोरदार बारिश हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुजूर में अर्ज किया कि या अल्लाह, वो बंदा बचने में से निकला हुआ नजर भी नहीं आया और इस बंदे ने हमारे सामने कुछ कहा भी नहीं, ये कैसे बारिश, आप मुझे उसका नाम। तो अल्लाह ताला ने फरमाया उसी बंदे की वजह से बारिश, जिस बंदे की वजह से बारिश रुकी हुई थी उसी बंदे की वजह से बारिश। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या अल्लाह, इसकी शक्ल हमें बताए, क्योंकि वो तो अल्लाह का वली हो गया, जब तौबा बंदा करता है और अल्लाह ताला उसको माफ फरमा देते हैं तो ये बंदा फिर अल्लाह का वली बन जाता है, अल्लाहु वलीयुल लजीना आमनू, अल्लाह का वली बन जाता है, या अल्लाह उसका चेहरा मुझे बता दीजिए। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसका और मेरा अपना अंदर का मामला है, मैं ना आपके सामने उसका इजहार करना चाहता हूँ न बंदों के सामने उसका इजहार करना चाहता हूँ, बस एक बंदा है, दिल में अपना मामला उसने मुझसे ठीक कर लिया और मुसालहत कर ली, मैंने उसकी वजह से आसमान खोल दिया। इसलिए मेरे भाइयों, जो बड़े बड़े गुनाह हो गए हैं जिसकी निशान देने की हदीस में की गई है, मसलन ज़कात अगर कोई बंदा रोक लेता है इल्ला उखिफ बिस्सिनीन, अल्लाह ताला उस कौम को बहुत सारी में मुबतला कर देते हैं, बहुत सारी का सबसे पहला इजहार जो होता है वो बारिश के बंद होने की वजह से होता है, यही से बहुत सारी शुरू हो जाती है। तो जब बंदे ज़कात को रोक देते हैं तो ज़कात के रोक देने की वजह से बारिश बंद हो जाती है, जब किसी बस्ती के अंदर जीना आम हो जाता है और रिबा आम हो जाता है, इज़ा ज़हरत ज़िना व रिबा फ़क़द अहल्लु बि अन्फुसिहिम अज़ाब अल्लाह, यह हदीस के अल्फाज है कि जब किसी बस्ती में जिना आम हो जाता है और जब किसी बस्ती में सूद और रिबा प्याज जब आम हो जाता है तो वो अपने आप को अल्लाह ताला के अज़ाब का मुस्तहिक बना लेती है, वो कौम अपने आप को अल्लाह ताला के अज़ाब के मुस्तहिक बना लेती है। तो ये चीजें ऐसी हैं जिसको गुनाह कबीरा कहा जाता है और जिसका असर जो है वो हमारी जात तक नहीं रहता बल्कि उसके जो असरात हैं वो पूरी कौम पर होते हैं और पूरी कौम इसकी वजह से परेशानियों में मुब्तला हो जाती है। बाज़े अहादीस में इब्ने माजा की रिवायत है, इसमें तो यहाँ तक फरमाया कि बंदों के गुनाह तो ऐसे हैं कि बारिश का एक कतरा न गिराया जाए, लेकिन चूंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं और जानवर होते हैं और हैवानात होते हैं उनके तो कोई गुनाह नहीं होते, इनकी वजह से थोड़ी बहुत बारिश होती है, इसकी वजह से बड़े भी प्यारा हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों दुनिया की बात तरफ से ही है कि हम अपनी गलत जिंदगियों को छोड़ें, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, अल्लाह ताला तो हमारी तरफ मेरे दोस्तों मुतवज्जे हैं, हम अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे नहीं है, अल्लाह ताला को हमसे मोहब्बत फरमाते हैं, यह अल्फाज है कि बंदों को अल्लाह ताला से ऐसी मोहब्बत नहीं है, वरना अल्लाह ताला तो असतम सदे के मुंतजिर होते हैं कि मेरी तरफ रुजू करो, वरना अल्लाह ताला की रहमत तो इतनी ज्यादा आम है कि ज़ाहिरी एतबार से भी हम तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं तब भी उसके असरात हम देखते हैं कि बारिश शुरू हो जाती है, यहाँ इस्तिग़फ़ार शुरू हुआ बारिश शुरू हो गई। इसलिए तौबा है, इस्तिग़फ़ार है और हकीकी मानों में तौबा और इस्तिग़फ़ार है और अल्लाह ताला का डर और अल्लाह ताला का खौफ हमारे दिलों में पैदा करना है, जो दरअसल तमाम गुनाहों को रोकने वाली चीज है, इसको कहते हैं खशियत और खौफ, अल्लाह ताला का डर और अल्लाह ताला की खशियत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के बनी इसराइल में से एक आदमी का वाकया बताया कि एक बंदा था जिसने अपनी पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी, जब उसकी मौत का वक्त आया तो उसने अपने घर वालों को जमा किया कि देखो एक खैर का काम मैंने तो नहीं किया, कोई भलाई मेरी जिंदगी में नहीं है, तुम देखते हो कि शुरू से लेकर अभी तक जीरो जीरो मेरे नाम है आमाल में, अब मौत का वक्त बिल्कुल करीब है, जब मैं मर जाऊं, खानदान वालों को कहा कि जब मैं मर जाऊं दफनाना नहीं मुझे बल्कि मेरी जो लाश है उसको तुम जला देना और जलाने के बाद जब बिल्कुल राख बन जाए इसको भी अच्छी तरह पीस देना, राख को भी अच्छी तरह पीस देना और मुझे जला देना, जब मैं राख बन जाऊं तो उस वक्त शराब की छोटी छोटी पुड़िया बनाना, बड़ी की जिसे हम कहते हैं छोटी छोटी पुड़िया उसकी बनाना, कुछ राब को सामने डाल देना, कुछ राब जमीन में दफन देना, कुछ राब को फिजा में उड़ा देना, कुछ इधर उधर कर देना। असल में उसके दिल के अंदर जो ख्याल था वो ये था कि अल्लाह ताला मुझे जिसम देने पर काबिल हुई, ये उसका ख्याल था कि जब मैं राख हो जाऊंगा और राख जब ये बिखर जाएगी तो अल्लाह ताला मुझे मेरी खिलकत को मुकम्मल नहीं करेगा, मुझे अल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर जमा नहीं फरमाएंगे, मेरी नाश फिर दूसरी मरतबा नहीं बनेगी, ये उसका ख्याल था। बारात की वसीयत के मुताबिक लोगों ने ऐसा ही किया कि उसके उसको जला दिया, उसकी राख को इधर उधर कर दिया, ये मामला तो हो गया। अब अल्लाह ताला के सामने उसको खड़ा किया, अल्लाह ताला ने उससे ये सवाल किया कि बंदे तूने ये सब क्यों किया, मेरे बंदे तूने ये सब क्यों किया। तो उसने मुख्तसर सा अल्लाह के सामने जवाब दिया, खशी तू का या रब्बी, ये उसका जवाब खशी तू का या रब्बी, या मैं इस वजह से कि मेरे दिल में आपका खौफ था कि आप मुझे ऐसा अजाब देंगे कि ऐसा अजाब आप किसी को भी नहीं देंगे, इसलिए कि मेरी पूरी जिंदगी बिल्कुल किया ही किया है। तो फिर अल्लाह ताला ने उसे फरमाया, क्या आपकी यही गरज थी, मेरा डर और मेरी खशियत, इसके अलावा कोई मकसद नहीं था। तो उसने भी यही जवाब दिया, खशी तो कई आप मेरे परवरदिगार, बहुत आपके डर की वजह से और आपके खौफ की वजह से मैंने किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, कद गफरतुला का, मैंने तुझे माफ कर दिया। इसके बढ़कर और अल्लाह ताला के लुत्फ और करम का क्या मामला हो सकता है कि जिसने पूरी जिंदगी गुनाहों में बसर की और अल्लाह ताला का खौफ उसके दिल में है, फिर जब खौफ अल्लाह ताला का पैदा होता है तो फिर बंदा गुनाह तो नहीं करेगा बल्कि वो अल्लाह का वली बन जाएगा। पर इस लाइफ में कितने वाकियात ऐसे हैं कि जिन बंदों ने तौबा इस्तिगफार करके वक्त के बड़े बड़े नबी बन गए, वक्त के बड़े बड़े वली बन गए, औलिया के सरफेर बन गए, उनके सरदार बन गए, ऐसे वाकियात बनी इसराइल में बहुत ज्यादा है और आप अलैहिस्सलाम ने इनको बयान भी फरमाया। और खुलासा मेरे दोस्तों बस यही है कि सच्ची मन की तौबा इस्तिगफार अल्फाज से काम नहीं चलता बल्कि अल्फाज में हकीकत होनी चाहिए। और हम सब जानते हैं कि मेरे अंदर क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। हर एक के सामने सफेद भी है काला भी है, हर एक जानता नहीं है कि इताअत किसे कहते हैं, गुनाह किसे कहते हैं, भलाई किसे कहते हैं, बुराई किसे कहते हैं, हर एक इस पर अच्छी तरह जानता है। वरना अल्लाह ताला मेरे दोस्तों उसके यहाँ तो ऐसी बात तो है नहीं कि उसके खजाने नऊज़ु बिल्लाह खाली हो गए, वही मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु वमा नुनज़िलुहु इल्ला बिक़दरि मालूम, हर चीज़ के खजाने हमारे पास तो मौजूद हैं और खजाने ज़ाहिरी नहीं है, उसके जो खजाने हैं वो अमरे कुल है। अल्लाह ताला का जो खजाना है उसका नाम है अमरे कुल, जब वो कुल कहता है उसके सारे खजाने वजूद में आ जाते हैं। हम कितनी मरतबा हमने तजर्बा किया और हम सब देखते हैं कि सब सब गर्मी होती है, बारिश के कोई आसार नहीं होते, आसमान पर कोई हल्की सी बदली भी नहीं होते, लेकिन आनंद पानंद पूरा जो आसमान है वो बादलों से भर जाता है और बारिश हो जाती है। अल्लाह ताला सबब के मुहताज नहीं है, बस अल्लाह ताला जो बंदे का वजूद देखते हैं और बंदे की इनामत को देखते हैं और बंदे की तवज्जो को देखते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा हमें तौबा और इस्तिगफार की जरूरत है। इस्तिमाई तौर पर तो माशाल्लाह मस्जिदों में होता है, इंफिरादी तौर पर भी इस्तिमाई तौबा करने की जरूरत है, इंफिरादी भी तौबा करने की जरूरत है। और तौबा और इस्तिगफार से कोई बंदा हारी नहीं, कोई यूँ नहीं कह सकता कि मेरे कोई गुना नहीं, कोई वली भी नहीं कह सकता, कोई नबी भी ऐसे नहीं है जिन्होंने तौबा इस्तिगफार नहीं किया हो। पूरे पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने सब कुछ वजूद सब सबको वजूद अता फरमाया, लेकिन आपके बारे में भी आता है कि रोजाना 70 मरतबा या 100 मरतबा इस्तिगफार आप करते हैं, 100 मरतबा 70 मरतबा आप इस्तिगफार रोजाना करते हैं। और ये सारे इस्तिगफार के अल्फाज जो हदीस में बयान किए गए आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ये सारे अल्फाज थे। हालांकि आपकी शख्सियत तो वो थी आपकी मौजूदगी में अल्लाह ताला ने मक्का वालों पर कोई अज़ाब नहीं उतारा, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. مکہ والے وہ اس لیے بچ گئے تھے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر موجود تھے اور اللہ نے فرما دیا تھا کہ جب تک آپ یہاں پر رہیں گے میں ان بندوں کو عذاب نہیں دوں گا اور آپ اب تو دنیا سے چلے گئے. اب کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو نہیں اتار سکتی؟ تو اس کو قرآن نے ہی بتا دیا وہ یستغفرون. جب بندے توبہ استغفار کریں گے تو میں اپنا عذاب اٹھا دوں گا. اور یہ بھی عذاب کی شکل ہوتی ہے کہ بارش کا نہ آنا اور بندوں کا پریشان ہو جانا, یہ بھی عذاب کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے. اس لیے ہم سب اجتماعی طور پر بھی توبہ کریں اور انفرادی طور پر بھی توبہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے.